संवाद का ये भाग दो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हे करुणा निधि भगवान, हे करुणा निधि भगवान, हे करुणा निधि भगवान, हे करुणा निधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। कर पूजन उपचार, वानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। वहां पहुंच कर दिवस जब बीत गए दो चार, तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। आज जब समुद्र से उतर करके प्रभु लंका के दरवाजे पर आ जाते हैं और दो चार दिन बीत गए, तो प्रभु अपने मंत्री गणों को बुला करके और विचार करते हैं। कौन सा विचार? कि हे भैया अब ये बतलाओ, आगे अब पांव बढ़ाना है। खबर नहीं क्या खाना है, हम तो उसके घर आ पहुंचे, हुआ नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद ना इसका पाया है। भगवान अपने मंत्रियों से कहने लगे कि दोस्तों अब आप हमें ये बतावें कि हमें लंका के अंदर आगे कैसे पांव बढ़ाना है। हम लोग तो उसके दरवाजे पर आ गए लेकिन लंकापति रावण चुपचाप बैठा हुआ है। उसने अपने मन में क्या विचार किया है? हम तो उसके घर में आ पहुंचे, वो युद्ध करने क्यों नहीं आया? लंका के द्वार बंद क्यों हैं? आखिर इसका भेद क्या है? प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए कृपा निधान, राक्षस गण साधारण नहीं, हे सुजान बलवान। विभीषण कहने लगे कि प्रभु आप राक्षसों को साधारण ना समझें, दरवाजे बंद देख करके आप अपने मन में ये ना समझ लें कि दशकंधर आपसे डरता होगा। हे नाथ, इतना ध्यान रखिए कि वो लंका में अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कोई ना कोई विचार अवश्य कर रहा होगा। कुछ दिनों और देखिए राह, या वीर नीत बतलाती है। को बंद मन देख करके ये मत समझें कि रावण शांत बैठा होगा, वो अपने मंत्रियों के साथ जरूर कोई ना कोई विचार कर रहा होगा। और फिर ये नीति शास्त्र कहता है कि शत्रु को दो चार दिन के लिए संभलने के लिए वक्त देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग। दो चार दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है, एक एक घर सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। हनुमान ने कहा भाई नीत शास्त्र का यहाँ पर आप प्रसंग मत छोड़ें, दो चार दिन की मोहलत जो है ना ये मेरी आंखों में खटक रही है, क्योंकि ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं माँ जानकी के प्राण सूख रहे हैं वहां पर। हम बड़े बड़े वृक्षों से बड़े बड़े पत्थरों से रावण के दुर्ग को ढहा देंगे, चुटकी में द्वारे किवाड़े तोड़ करके लंका में हम अपने हाथों से प्रलय मचा देंगे, राजभवनों को तोड़ेंगे तो निशाचर रावण घबराएगा और सीता माता को दे जाएगा और खुद लड़ने के लिए आएगा। बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराय, जय पाने के लिए है या भी उचित उपाय। सुग्रीव ने कहा हनुमान विजय प्राप्त करने के लिए आपकी योजना अच्छी है, लेकिन फिर भी मेरी एक राय है, मेरा एक परामर्श है आपसे। जानते हो कौन सा परामर्श? मेरी सलाह ये है, मेरा परामर्श ये है कि फिर मेरी भी या सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए। जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा लाए, संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचार या सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की, फिर एक बार बस तुम्हीं यहाँ तकलीफ उठाओ जाने की। हनुमान यद्यपि आपका प्रस्ताव सुंदर है, लेकिन फिर भी मेरी एक राय है कि सबसे पहले शत्रु के यहां पर अपना एक दूत भेजा जाए जो समझाए सुलह कराए, यदि किसी प्रकार से ये युद्ध ना हो तो सुंदर है, क्योंकि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। युद्ध में न जाने कितनी माताएं निपुतनियां हो जाती हैं, न जाने कितनी बहनें बिना भाइयों की हो जाती हैं, न जाने कितनी बहनों का मांग का सिंदूर उजल जाता है। और हनुमान तुम भी बात ठिकाने की कर रहे हो, इसलिए ना हो तो तुम ही ये तकलीफ उठाओ, जाओ रावण के दरबार में ये सूचना पहुंचाओ। लेकिन जामवंत कहने लगे, है तो आपका विचार ठीक, लेकिन मेरे विचार से हनुमान का लंका में जाना उचित नहीं होगा। अगर हनुमान फिर इस बार जाएंगे तो वो रावण यही समझेगा कि शायद सारी राम सेना में यही एक वानर है जो बार बार आकर यहां पर अपनी शक्ति दिखाता है, इसलिए मैं ये सुझाव देता हूं कि इस बार अंगद को लंका के अंदर भेजा जाए। प्रभु बोले बाली तने तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। किंधा के युवराज तुम्हें कभी सेना संचालन ही का शोभा देता है काज तुम्हें। अंगद बोले श्रीनवा सुनिए कौशलनाथ रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। प्रभु राम अंगद को बुलाते हैं अपने पास। बोले भैया हे बाली नंदन मैं तुमको अपने पुत्र के समान समझता हूँ। लंका में दुश्मन के घर पर इसीलिए तुमको भेजने में घबरा रहा हूं। और फिर यह भी उचित नहीं है कि किष्किंधा का युवराज एक दूत का कार्य करे। तुम्हारे लिए तो सेना संचालन ही शोभा देता है, यही कार्य आपके लिए सुंदर लगता है। ये बात सुनकर के अंगद कहने लगे प्रभु आप मेरी बात गौर करके सुने। मैं केवल इतना चाहता हूं कि अपना हाथ आप मेरे सिर पर रख दें। हे प्रभु जरा एक बात आप विचार करें कि जिन पर है आपकी कृपा नाथ वो जाकर लड़े रसातल तक। कभी उदयाचल तक अस्ताचल तक प्रभु का प्रताप ही ऐसा है पत्थर तैरे हैं पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का जन से हो कार्य जनार्दन का इससे बढ़कर सम्मान राज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने में उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वस आज्ञा दो संवत सर जाने का इच्छुक हूँ। अरे हे नाथ आप मुझे आज्ञा दे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जाने के लिए लालायित हूँ। जब आपके प्रभु प्रताप से जल में पत्थर तक तैर सकते हैं तो मेरे लिए कार्य कौन बड़ा दूर है। और फिर नाथ आपका दूध जो बनता है वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है। प्रभु ने कहा अच्छा जाओ अंगद युवराज जाओ अपने व्यवहार में कुशलता दिखाओ बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति तुम समर्थ हो, सब भांति तुम बलवान हो। कुछ धर्मनीत कुछ राजनीत कुछ बल भी दिखलाते आना, बलवीर जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। अंगद जब जाने लगे पुलक की प्रफुल्लित गात, तभी विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात। अंगद प्रभु की आज्ञा को पाकर जैसे ही चलते हैं, तभी विभीषण ने बुलाया कि भैया अंगद जरा इधर आप आओ और मेरी भी बात ध्यान देकर सुनो, एक दो संदेशे मेरे भी हैं, वो संदेशे जा करके और कह देना किससे, मेरे भाई दशानन से। कौन से संदेशे? कि दो एक संदेशे हमारे भी, कह देना हठी दशानन से। जिसने की किया था पद प्रहार मुझ पर उठ कर सिंहासन से, समझता है अब देखें लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। या भांति जतला देना घर में, एक भीषण ही रह जाएगा बसु तर्पण को। जाओ जाकर कह देना कि उसने मुझ पर चरणों का प्रहार किया था, लेकिन एक समय वो आ जाएगा कि सारी लंका में सभी को तर्पण करने के लिए एक भीषण ही रह जाएगा। मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, अंगद को करने विदा उठा किस समुदाय। अंगद को विदा करने के लिए आज सारे वानर साथी उठते हैं, गरज करके पवन गत के तरीके से बाल तने बलवीर आज प्रभु के चरणों को निरखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लंका के दरवाजे पर पहुंचे, पग प्रहार से तोड़ कर लंका द्वार कपाट किया, प्रवेश तुरंत ही प्रहरी जन को डांट। बांका बल वाला मत वाला मल्लों की नाई चलता था, रणरंगी जंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठू भीड़ हुई, डर न किया कुछ अंगद ने बस इसी बात पर छेड़ हुई। कुछ भौएं कुछ टेढ़ी करके उसने इस भांति कलाश किए, आगे से मेरे हटा नहीं जाता दिन मुझे प्रणाम किए। राजकुमार यहाँ का है बोटी बोटी नुचवाऊंगा। के दरवाजे को तोड़ करके मित्रों जैसे ही लंका के अंदर प्रवेश करते हैं, जाते जाते रावण के बेटे से अनायास ही इनकी मुठभेड़ हो गई। इन्होंने उसका आदर नहीं किया, इसलिए वो क्रोध में आकर के भौहें टेढ़ी करके कहता है, वानर मेरे आगे से हट जा, बिना प्रणाम किए तू मुझको जा रहा है, इस असभ्यता का स्वाद मैं तुझे अभी चखाऊंगा, मैं यहां का राजकुमार हूं, तेरी बोटी बोटी भी नुचवा लूंगा। अंगद अंगारा हो गए उसकी बात को सुनकर, कहने लगे, ओ भाई खबरदार हो जाओ, अभी तुम्हारे होठों का दूध नहीं सूखा है और बने हो सिपाहसार, हम जिसके भेजे हुए आए हैं ना, वो इस भूमंडल का स्वामी है, अगर आगे से हम तुम्हें प्रणाम करें, हम तुम्हें प्रणाम क्यों करें, क्या हमने तुम्हारा कोई कर्जा खाया है, अरे हम बाल राज के बालक हैं जो अपने बल में पूरे थे, तू क्या है, उन्होंने तेरे पिता रावण को 6 महीने काख में दबाए रखा था, तू बेढंगी बातें करता है, अरे हट जा, अगर तू रावण का बेटा है तो मैं राम का दूत हूं, नादान आंखें खोल, आज तेरा मुचेटा अंगद से है, अंगद से। वह बोला बस मौन हो, मुंह को लगा लगाम, आज सामना हो गया कभी सुना था नाम, ओ धूर्त वानर हट जा मेरे आगे से, अरे आज तेरा नाम सुना है, आज तेरी और मेरी मुलाकात भी होगी, हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है, हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तू स्यारों से भी कमतर है, क्या दूत उन्हीं लड़कों का है, क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं, झूठा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं, बंदी ग्रह में उसका गुलाम बन बेवकूफ, क्यों आया राजनगर में मैं, अच्छा अच्छा तुम राम की बात करते हो जो जंगल में मारे मारे घूम रहे थे, अरे वो वनवासी जो अपनी पत्नी की याद में दुखी घूम रहे हैं, उनका दूत बनकर आया है, गुलाम बनकर आया है, अरे बेवकूफ इस लंका नगरी में आया है, तभी काट कर बात को बोल उठे प्रभु दूत, वाह वाह क्या बात है चोर पिता के पूत, बात को काट कर के अंगद कहते हैं, वाह भाई वाह, अरे चोर पिता के बालक बातें बना रहा है, एक तो परनारी को चुरा करके अपने घर में बाबा बनकर के ले आए, ऊपर से तारीफें करता है, अरे कायर सहजोरी की बातें करता है, अरे अब हमारा समय है, ठहरो हम तुमको दिखलाएंगे कि लंका में हम किस प्रकार से भीषण संहार कर सकते हैं और किस प्रकार से सारे राक्षसों को मार करके हम सीता माँ को ले जाएंगे, हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तेरा ती पानी पर, आ गए बनाकर से तुमार्ग तेरी लंका राजधानी पर, हम उन राम के दूत हैं जिनका छोटा सा एक दूत अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगी बेखौफ समुंदर पार गया, जिनका तेजस्वी मुख निहार रिझी सिर सूप है, जो बुआ तुम्हारी होती है लंका में सती साधी है, बोली वा मुझ दासी को स्वामी ले चलो शादी करके, स्वामी ले चलो शादी करके, हो भेजा नकची बूची कर के आगे तुम्हारी बुआ सुपरखा जी गई और कहने लगी कि सुनो हमको साजिश करा करके और अयोध्या में ले चलो, लेकिन लक्ष्मण जी ने उनके नाक और कान काट लिए। बात बात में यो बढ़ी बिना बात की रार, दोनों थे रणकेसरी दोनों राजकुमार। अंगद के मुंह लगकर उसने जब इस प्रकार मुंह की खाई तो खिसिया कर खाड़ा तोला, बोला क्या मौत खींच लाई। अब तो दोनों पक्षों में भिड़ंत शुरू हो गई। क्रोध आ गया अंगद जी को। अंगद जी उठाते हैं उस बालक को रावण के कटतोड़। अंत में अंगद ने उसका निसत्य तो नितांत किया। घरों में पत्थर पर पटका पलटा देकर प्राणांत किया। उठाया और उसको पत्थर के ऊपर पटक दिया। बोलो हनुमंत लाल की। तो लंका में हुआ जब घर घर हाहाकार, नर नारी डरने लगे बंद हुआ बाजार। अरे मित्रों अब तो अंगद की धाक जम गई धाक। घर घर में हाहाकार मचा हुआ है, सारी लंका नगरी की बाजार बंद हो गई। जिधर भी देखो ये शोरगुल मचा हुआ है। अरे लंका वालों फिर वही बानर आ गया है जो एक बार लंका जला करके चला गया था। हे ईश्वर, अरे अब क्या होगा, एक बार लंका जलाकर सारे लोगों को नष्ट कर गया है, आज फिर वही वानर आया है, आज लंका में क्या होना है। उस ओर राज के दूतों ने सब देखा सुना बखान किया। इस ओर सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया। रहा था सभा में जब रजनी चर राज, द्वारपाल ने आ कहा जय राजेश्वर राज। तपसी बच्चों की सेना से अंगद दरवाजे पर पहुंचते हैं। द्वारपाल जाकर कहता है अंदर, हे महाराज, उन तपसी बच्चों की सेना से एक वानर यहाँ पर आया है। अपना नाम अंगद बताता है और अपने को दूत बताकर कुछ राज्य का संदेशा लाया है। है खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में, यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजा धीराज की सेवा में। श्रीमान वही बानर होगा जो कभी नगर में आया है, दूतों ने जिसकी बात कही घर घर जिसका भय छाया है। फट ऐसे मरकट हत्यारे का, जो आया द्वार की वार तोड़ घातक है राज दुलारे का।